ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा। जिन्होंने भी अपने सेल फोन चलाए है उसको एक तो वाइब्रेटर मोड पे रख दो या स्विच ऑफ कर दो। हरे कृष्ण।
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय पहला। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ति भोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सम्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा पर्याप्तं त्विदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मं विभक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयनं हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनद्योच्चै शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानखगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सह देवश्च काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दध्मु पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता भारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव सञ्जय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् कुरुन् इति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून्नवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनाः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाश्वसुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुम् इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्य धार्त्र राष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मात् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषरेतैर्कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यत
यदि मां
प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः सङ्खे रथोपस्त उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस ॐ श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुनसंवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पश्चात अब उनके आदेशों को सुनना और उनके आदेशों को अपने जीवन में उतारना बहुत ही उपयुक्त है। और भगवान के आदेश जो भगवत गीता में उन्होंने दिए, इतने गहरे आदेश और इतने गुह्य, इतने प्रामाणिक आदेश और किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें जब भी भगवत गीता के संपर्क में हम आते हैं तो हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि भगवान और भगवान के जो प्रतिनिधि हैं श्रील प्रभुपाद, इनकी कृपा से हमें भगवत गीता के श्लोक, जैसे हम पूरा अध्याय पाठ करते हैं, कहा गया है कि भगवत गीता के श्लोकों का कोई एक अक्षर भी गलती से उच्चारण कर दे तो उसकी मुक्ति निश्चित है। सोचिए कि हमारा सौभाग्य कितना है कि हम पूरा एक अध्याय एक साथ भगवत गीता का पाठ कर पा रहे हैं। तो पिछली बार हमने भगवत गीता का वो श्लोक लिया था पहले अध्याय का, जिसमें क्या कहा गया था, किसको याद है? हाँ, सेना निरीक्षण का दृष्टिकोण। हाँ, अर्जुन अब देखना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र धार्तराष्ट्रांच दुर्बुद्धे, कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र और कौरव सेना में कौन कौन उपस्थित हैं जो इस युद्ध के इतने इच्छुक और उत्सुक हैं। तो अब संजय आगे धृतराष्ट्र को ये बहुत ही सुंदर और विशेष श्लोक बोल रहे हैं। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय अब इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, जिनके इतने अनेकों नाम हैं, अर्जुन के भी बहुत से नाम थे और खैर भगवान श्री कृष्ण के तो अनगिनत नाम हैं ही, तो यहां पर विशेष रूप से संजय अब अर्जुन को उल्लेख करते हुए बोल रहे हैं गुडाकेशेन भारत। तो अर्जुन के इस नाम के ऊपर गौर करने से पहले हम भारत, इस नाम के ऊपर गौर करेंगे। भारत किसको पुकारा जा रहा है यहां पर? नहीं, भरत वंश के तो ठीक है, परंतु यहां संजय किसको बुला रहे हैं? भारत नहीं, अर्जुन को गुडाकेश बुला रहे हैं, धृतराष्ट्र को। संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं हे भारत। तो धृतराष्ट्र को भी भारत पुकारा जा सकता है क्योंकि भरत वंश के, और यहां पर संजय धृतराष्ट्र को भारत इसलिए बुला रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, पूरे भरत वंश में तुम जैसा निकम्मा कोई नहीं निकला। इस प्रकार का वो भाव तो नहीं बोल रहे हैं, परंतु एक व्यंग कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में आपस में भरत वंशियों ने कभी युद्ध नहीं किया। इसलिए याद दिला रहे हैं धृतराष्ट्र को कि तुम उसी वंश में, उसी वंश में हो तुम, कि जिस वंश में सभी आदर्श राजा रहे। तो यहां पर धृतराष्ट्र को भारत बुलाया जा रहा है, परंतु आज हम ज्यादा गौर करेंगे अर्जुन को जो गुड़ाकेश बुलाया गया है। अर्जुन का यह नाम क्यों है, क्यों मिला अर्जुन को यह नाम गुड़ाकेश? पीछे से कोई, पीछे से सुनते हैं। हाँ, इंद्रियों पे कंट्रोल, बस इतना ही। हाँ, नींद पर कंट्रोल। हाँ, तो भगवान अर्जुन को ये नाम मिला। इसे यदि हम विभाजित कर पढ़ें, गुड़ा का और ईश, ईश का अर्थ हम बहुत बार सुने हैं ईश्वर, तो जो गुड़ाक के ईश्वर है, संस्कृत में गुड़ाक का अर्थ होता है निद्रा, आलस्य। इसकी हम चर्चा करेंगे कि तमोगुण, विशेष रूप से तमोगुण को भी गुड़ाक कहा गया। गुड़ाक का अर्थ है तमोगुण, तमस। तो विशेष रूप से अर्जुन को यह ख्याति मिली, अर्जुन को यह पदवी मिली, ऐसे ही नहीं कि अर्जुन को इंसोमनिया था। इंसोमनिया जानते हैं, ये बीमारी होती है, नींद नहीं आती। तो अर्जुन को कोई बीमारी नहीं थी कि नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी अपने स्वयं के बल से, योग बल से, योग शक्ति से और क्षात्र बल से। अर्जुन ने निद्रा देवी को जीत लिया था। सोचिए, अर्जुन जैसा क्षत्रिय क्यों कोई नहीं था उस समय का? क्योंकि क्षत्रियों ने बहुत से अन्य क्षत्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की थी, परंतु किसी भी क्षत्रिय ने अपने आलस्य, तमोगुण, निद्रा के ऊपर विजय किसी ने प्राप्त नहीं की थी, जो कि अर्जुन ने प्राप्त की थी। तो हम देखते हैं कि अर्जुन को यह जो नाम मिला गुड़ाकेश, इसके पहले तो तीन अर्थ हम देखेंगे। आलस्य, निद्रा एवं थकान। यदि हमें कोई नाम दिया जाए तो क्या नाम हमें मिल सकता है इसी संदर्भ में? हाँ, गुड़ाक दास। आलस्य, निद्रा एवं थकान के हम दास। और विशेष रूप से कलयुग में ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजों को लोग बहुत रुचि से अपने जीवन में सुरक्षित रखें। वो इसे दुर्गुण तो बिल्कुल नहीं मानते, और उल्टे बहुत से लोग, जब मैं डिफेंस में था तब कितने सारे मेरे मित्र थे, वो कहते थे This is my favorite sport. अंग्रेजी में बोलते हैं sleeping, सोना। तो यहां पर हमारे शास्त्रों के अनुसार ये जो तीन अर्थ हैं गुड़ाक के, ये तमोगुण, तीनों तमोगुण के श्रेणी में आते हैं। यदि हम एक एक को लें, आलस्य, लय, संस्कृत में इसे लय भी कहा जाता है। अब आलस्य ये हम यहां पर शारीरिक रूप से चर्चा नहीं कर रहे, शारीरिक रूप से निद्रा और थकान वो शारीरिक रूप के स्तर पर है, शरीर के स्तर पर, परंतु यहां पर आलस्य ये सूक्ष्म स्तर पर है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत चुस्त रहेगा, रजोगुणी व्यक्ति शरीर से बहुत चुस्त रहते हैं, परंतु जैसे ही किसी सूक्ष्म कार्य में लगते हैं तुरंत आलस्य छा जाता है। सूक्ष्म कार्य का अर्थ क्या है कि जब भौतिक इंद्रियां, जो स्थूल इंद्रियां हैं, पंचेंद्रियां हमारी जो हैं, पंचेंद्रियों को छोड़कर जब सूक्ष्म इंद्रियां जैसे मन, बुद्धि, जब इनसे कोई कार्य करना होता है तो उसमें वो व्यक्ति बिल्कुल भी चुस्त या कोई स्फूर्ति नहीं दिखाता। जैसे कि यहां पर हम लोग सब एकत्रित होते हैं श्रवण कीर्तन के लिए, तो यहां पर हम, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसे चुस्त रखने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि जो भौतिक इंद्रियां हैं वो तो अब बस शांत हैं, कोई उसमें ज्यादा एक्टिविटी या कोई क्रिया नहीं हो रही। इसलिए जब हम आलस्य की चर्चा कर रहे हैं तो आलस्य की चर्चा हमें सूक्ष्म स्तर पर करनी होगी कि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से थका हुआ भी हो परंतु आंतरिक रूप से वो व्यक्ति निरालस्य हो सकता है और इसके विपरीत भी। तो आलस्य के अलग अलग लक्षण, सबसे पहला लक्षण आलस्य क्या है, निरुत्साह, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, उस प्रकार का कोई व्यक्ति जिसके जीवन में बस, कई ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जीवन जीने की कोई वजह ही नहीं मिल रही मुझे, क्यों जीऊं मैं, तो कोई उत्साह जब नहीं होता, जिसे कहते हैं lack of enthusiasm। तो यहां पर यदि हम अर्जुन की चर्चा करें तो अर्जुन के अंदर इतना उत्साह था, इतना उत्साह था कोई भी कार्य करने के लिए। जब अर्जुन गुरुकुल में भी थे तो अर्जुन का इतना उत्साह था हर एक चीज सीखने के लिए। इसलिए द्रोणाचार्य उदाहरण देते हैं कि मैं एक गाय के समान हूं और अर्जुन एक बछड़े के समान। एक बछड़े का कितना उत्साह रहता है गाय का दूध पीने का। वो कहते हैं कि एक जो शिक्षक होता है वो गाय के समान होता है जो कि दूध देने वाली गाय हो, परंतु यदि गाय हो और दूध देने वाली हो, दूध भी हो, परंतु यदि बछड़ा उत्सुक नहीं है पीने के लिए तो गाय दूध भी नहीं दे सकती ठीक से। तो अर्जुन की तुलना उस बछड़े के समान उन्होंने की कि अर्जुन इतने उत्साही थे हर एक कार्य में। इसलिए कई बार जब कोई व्यक्ति का उत्साह आप देखते हैं तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि किसी व्यक्ति का जो उत्साह है वो कंटेजियस हो सकता है पॉजिटिव सेंस में, कि किसी दूसरे व्यक्ति के उत्साह के वजह से हमारे अंदर उस प्रकार, जैसे कई बार कीर्तन में कोई बहुत उत्साह से नाच रहा है, जैसे जब राहुल भगत प्रभु अंदर आते हैं तो कई भक्त हैं उनके अंदर कोई इच्छा नहीं नृत्य करने की, हालांकि शर्माते भी होंगे कि सबके सामने हम उनकी तरह कैसे युद्ध नहीं नृत्य करें। तो कई बार मन में वो उत्साह पैदा होता है और मन में नाचते हैं। तो उत्साह जो है वो बहुत आवश्यक है यदि हमें आलस्य दूर करना है। तो यदि हमारे अंदर निरुत्साहपन आ रहा है इसका अर्थ है कि आलस्य, इसका अर्थ है तमोगुण, इसका अर्थ है गुड़ाक हमारे अंदर। ये एक और लक्षण है आलस्य का, स्थगन वृत्ति। समझ गए? नहीं, नहीं, पोस्टपोन, मेंटालिटी टू पोस्टपोन, स्थगित करना कोई भी चीज हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, अगले जन्म में, स्थगित करना हर चीज को। तो ये जो स्थगन वृत्ति है, जैसे बहुत बार जब नियमों को सुनते हैं कि चाय कॉफी ठीक नहीं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कल से छोड़ा चले, नहीं तो राधाष्टमी, राधाष्टमी से क्या शुभ दिन है, फिर राधाष्टमी का दिन आ जाता है, फिर बाद में सोचते हैं कि शरद पूर्णिमा भी पास में है तो शरद पूर्णिमा तक, फिर बाद में कार्तिक, फिर गीता जयंती, सबसे अच्छा गीता जयंती, दिसंबर का महीना, मार्गशीर्ष का महीना, फिर मार्गशीर्ष का महीना आ जाता है, ठंड में क्या है थोड़ा गर्म चाय अच्छी रहती है, तो माघ के महीने, जनवरी के महीने क्या है? नया साल, रेजोल्यूशन वगैरह, इसे कहते हैं स्थगन वृत्ति। ये भी आलस्य का एक लक्षण है। बहानों का सहारा, जब भी हमारे अंदर इस प्रकार की वृत्ति होती है कि हम बहाने देना शुरू करते हैं, और झूठे बहाने, लेम एक्सक्यूजेस जिसे कहते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि फिर आलस्य हमारे अंदर वो तमोगुण का रूप ले रहा है। अब जो दूसरा अर्थ है गुड़ाक का, निद्रा, अब ये स्थूल स्तर पर है, आलस्य सूक्ष्म स्तर पर। निद्रा का अर्थ है कि शरीर से पूर्ण प्रकार से तमोगुण में जाना, शरीर को लेकर। और श्रीमद् भागवत में निद्रा के विषय में बताया गया है। सबसे पहले हम अर्जुन के इस गुण को लेंगे, जिन्होंने निद्रा के ऊपर भी विजय प्राप्त की। तो ये कथा हमने पहले भी सुनाई कि जब एक समय सभी पांडव कुंती के साथ, ये युद्ध के पहले की बात है, तो वो लोग जब वन में थे, नहीं नहीं ये वन में, वन की बात नहीं, ये गुरुकुल की बात है, क्षमा करना, गुरुकुल में द्रोणाचार्य ने विशेष रूप से भीमसेन जी को कहा था कि क्योंकि भीमसेन जी खाने में बहुत रुचि रखते थे, तो भीमसेन जी को कहा था कि जब अर्जुन हो पास में तब तुम अंधेरे में कभी मत खाना। क्योंकि एक बार हुआ ऐसा था कि वो अपनी कुटिया में बैठकर सभी खा रहे थे और अचानक हवा का झोंका बहा और जो दीप जल रहा था वो बुझ गया, परंतु भीमसेन जी चालू थे अपने, क्योंकि चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी हो हाथ तो ढूंढ लेता है, ये हमारा भी अनुभव है, भीम होने की जरूरत नहीं है इसमें। कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि लोड शेडिंग हो गया अचानक, नासिक में इतना होता है, अंधेरा, पूरा अंधेरा हो गया और आपके सामने पूरा फीस्ट का प्लेट है, हलवा, बटर हलवा आप खा रहे, और आपने वो तैयार किया घास अब मुंह में डालने के लिए और अचानक बत्ती चली गई, तो क्या गलती से आप और कहीं डालते हैं, मुंह में जाता है ना। तो ये बात भीमसेन जी को स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया गया था कि खाओ, परंतु अर्जुन को इसका भान नहीं होना चाहिए। उन्हें लगा क्यों भाई, अर्जुन को इसका भान क्यों नहीं होना चाहिए, क्या होगा, वो मेरे प्लेट से तो कुछ लेगा नहीं, ऐसे तो अर्जुन करेगा। परंतु फिर पता लगा कि एक दिन हुआ ऐसा ही कि जब सभी लोग ले रहे थे अपना प्रसाद, सो अंधेरा हो गया और भीमसेन जी वो भूल गए उस बात को और वो खाना जारी रखे, तब और जब फिर से बत्ती जलाई गई तो अर्जुन ने देखा कि भीम ने पूरा खत्म कर दिया और वो सब रुके हुए थे। तो अर्जुन ने पूछा कि भाई तुमने अंधेरे में पूरा खत्म कर दिया, भीमसेन जी का क्या उसमें क्या भाई, मैं आंखों से तो नहीं खा रहा है, मैं तो जिह्वा से खा रहा हूं। तो उसमें अंधेरा या उजाला क्या फर्क पड़ता है? तब फिर अर्जुन ने सोचा कि यदि भीम अंधेरे में खा सकता है तो मैं अंधेरे में धनुर्विद्या का ट्रेनिंग प्रशिक्षण क्यों नहीं ले सकता। आज से सोना बंद, और गुरुकुल में उस दिन से अर्जुन रात्रि को भी प्रशिक्षण अपना लेते थे। इसलिए निद्रा के ऊपर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी इस प्रकार से। और महाभारत की एक बहुत ही सुंदर घटना है कि 13वें दिन की बात है। कितने दिन युद्ध चला? 18 दिन। तो 13वें दिन की बात है जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया, और अकेले अर्जुन ने उस दिन कौरव सेना के 7 अक्षौहिणी सेनाओं को, विभागों को खत्म किया था अकेले। अब तक आपको अचरज नहीं हुआ होगा क्योंकि 7 अक्षौहिणी सुनकर केवल वो 7 फिगर आता है। कितने योद्धा थे पता है 7 अक्षौहिणी सेना में? 14 लाख। अकेले अर्जुन ने उस दिन 14 लाख योद्धाओं को, कुरु योद्धाओं को धराशाही कर दिया था। तो दुर्योधन इतना क्रोधित हुआ और इतना अपमानित हुआ कि दुर्योधन से रहा नहीं गया, सहन नहीं कर पाया अर्जुन का ऐसा पराक्रम देखा उसने। तो दुर्योधन ने किया क्या कि जितनी बची हुई सेना थी पूरी सेना को कहा कि आज रात को जाकर हम प्रहार करेंगे पांडवों के ऊपर, जो कि नियमों के विरुद्ध था। जैसे सूर्यास्त हुआ युद्ध समाप्त, परंतु दुर्योधन से रहा नहीं गया, उसने कहा कि आज रात को हम प्रहार करेंगे, और वो भी मध्य रात्रि को जब सब सोए हुए होंगे उस समय। तो अब ये सारे योद्धा इतने थके हुए पूरे दिन भर, और अब रात को भी नाइट शिफ्ट भी, ओवर टाइम भी देगा नहीं ये कुछ। और दुर्योधन ने इस प्रकार का प्रयोजन इसलिए किया क्योंकि दुर्योधन सोच रहा था कि अर्जुन ने अकेले 14 लाख योद्धाओं को परास्त किया है तो अर्जुन बहुत थक गया होगा, और अर्जुन गाढ़ निद्रा में सो रहा होगा। तो जब धावा बोला मध्य रात्रि के पश्चात तो सभी इतनी गाढ़ निद्रा में सो रहे थे, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि सारे दिन भर का युद्ध, और वो कोई युद्ध आजकल के युद्ध के समान नहीं था केवल बटन दबाते रहो, केवल बटन दबाओ और वो तोप चलता रहेगा, मिसाइल चलता रहेगा। खैर उसमें भी बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे हमें एक हमारे ट्रेनिंग में एक वॉर ट्रेनिंग दिया गया था, फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग कैंप उसे कहते हैं। तो हमें जंगल में ले जाया गया था, और जंगल में वहां पर सभी टेंट में हम लोग रहते थे, और जैसे युद्ध के समय का माहौल, उस प्रकार का माहौल क्रिएट किया गया था कि कभी भी रेड अलर्ट का सायरन शुरू हो जाएगा, और जब भी रेड अलर्ट का सायरन शुरू होगा तो तुरंत सभी को अपनी बंदूकें लेकर और तैनात रहना है। तो कई बार वो रेड अलर्ट का सायरन रात के 2:30, सभी थके हुए सोए, 2:30 बजे बजता, और इतनी नींद में गाली देते हुए कई लोग बाहर आते, उनको पता है कोई युद्ध नहीं हो रहा है, ये खाली प्रैक्टिस चल रहा है। तो कई बार इतने सभी पूरे दिन की थकान के बाद जब वहां पर मेस में बैठकर खाते, जो कुछ मिलता इतना अच्छा लगता, इतनी भूख लगी होती, और जैसे ही लोग खाना शुरू करते रेड अलर्ट का सायरन, उसको छोड़कर तो एक जो मेरा दोस्त था उसको इतनी भूख लगी थी, चाहे बोला कि रेड अलर्ट हो चाहे ग्रीन अलर्ट हो चाहे सारे रंग बजा दें इन लोग, मैं नहीं उठने वाला। और उसे इतना दंडित किया गया, उसने कहा पहले खा लूं फिर जो पनिशमेंट दो लूं। ट्रेनिंग में सुबह 5 बजे हमारा ये हेल्थ रन होता था, तो किसी की आदत नहीं इतना जल्दी उठने की, उसके लिए 4:30 बजे उठना पड़ेगा। तो कई लोग क्या करते कि जूता पहन के, वो पीटी शूज पहन के सोते, और जैसे उनका अलार्म लगाते 5 मिनट पहले का, 4:55 का, और ऐसे ही बिना कुछ किए सुबह ऐसे ही भागते वहां हेल्थ रन के लिए। और क्योंकि वो उस समय अंधेरा होता तो सबसे पहले रोल कॉल लिया जाता सबका कि सब प्रेजेंट हैं कि नहीं, हाजिरी सबकी ली जाती। तो कितने तो उधर खड़े खड़े नींद मारते रहते, तो जब उनका टर्न आता, उनका नंबर आता, जैसे सबके नंबर थे तो नंबर आता जैसे 960 961, फिर वो पुकारता 962, कोई आवाज नहीं आ रही क्योंकि 962 नींद में है अभी, तो फिर थप्पड़ की आवाज सुनाई देती। तो मेरा एक बॉम्बे बैच का था, वो मुझे बोला करता था कि देख मुझे बहुत अच्छी नींद आती है वो रोल कॉल के समय, तो मेरा प्रॉक्सी लगाना। तो हर बार उसका नंबर मैं ही बोलता यस सर प्रेजेंट, तो उसे पता लग गया एक बार कि ये आवाज मैंने पहली भी सुनी, ये दूसरी बार ऐसी आवाज, तो उसके बदले फिर मुझे पड़ी। तो मैंने कहा यार तुम्हारे थप्पड़ की भी प्रॉक्सी मुझे लेनी पड़ी। और एक बड़े ग्राउंड में हमको भगाया जाता जिसमें कोने में एक मिग एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ था, तो वो मिग एयरक्राफ्ट से घूम के सबको आना पड़ता था सुबह भागते हुए। तो होता क्या है कि जैसे एक फ्लाइट में, फ्लाइट का अर्थ है उस सारे जो भागते हुए, उसमें यदि 20 हैं और 10 राउंड लगाना है उसका, तो वो जो ट्रेनर होता था वो एक कोने में खड़ा होकर काउंट करता रहता, एक राउंड हो गया, दो राउंड हो। तो कई लोग क्या किया करते थे, जब वो एयरक्राफ्ट से घूमकर आना है तो वहां पर छिप जाते थे और दूसरों को बोलते यार जब 9वां राउंड तुम लोग जाओगे तो हमको उठा देना, तो हम वो 10वें राउंड में ज्वाइन करेंगे। तो कितनों को इंस्ट्रक्टर यहीं पर रुका देता, उनको पता लगता है कि अचानक पहले 20 लोग थे इसमें, अब 5 कम दिख रहे हैं, 6 कम दिख रहे हैं, उन्हें उधर ही रुका देता। और फिर वो टॉर्च लेके जाता तो वहां पे खर्राटे मार रहे हैं 6 लोग। तो फिर से हम चलते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि, तो वहां पर अर्जुन मध्य रात्रि के समय जब दुर्योधन ने अपने सारे और सभी बिना किसी मन के आए थे, अब रात के समय और फिर कल सुबह फिर से युद्ध में लगना है, खड़े होना है, तो किसी की इतने थके हुए किसी को कोई इच्छा नहीं थी। तो अर्जुन को पता लगा कि दुर्योधन इस समय और मशाल और क्या क्या नहीं लेकर, क्योंकि अंधेरा था तो सब कुछ ठीक से दिखे, क्योंकि नहीं तो आपस में ही मारने लगेंगे वो लोग, तो इसलिए मशाल ये सब लेकर वो लोग सब आए थे। तो जब ये समाचार अर्जुन को दिया गया मध्य रात्रि के पश्चात, तो सभी पूरी जो पांडव सेना है वो तैयार हो गई। तो अर्जुन ने कहा कोई नहीं आएगा, तुम लोग सब आराम करो, मैं अकेले जाऊंगा। तो अर्जुन ने किसी को आने की अनुमति नहीं दी और अकेले अर्जुन गए। और यहां पे पूरी दुर्योधन की सेना और अर्जुन अकेले। तो अर्जुन जब पहुंचे तो अर्जुन ने सबके चेहरे देखे सारे जो कुरु सेना के योद्धा थे वैसे ही जो मैं बताया ना, कोई नींद में, कोई ऐसे ही जम्हाई ले रहा है, और ऐसी हालत सबकी देखी अर्जुन ने। तो अर्जुन ने कहा कि भाई तुम वैसे ही मरे हुए हो, तुम लोगों को मैं क्या मारूं, और तो कुछ मजा नहीं आएगा युद्ध में। ऐसा करो कि मैं यहां पर रुकता हूं, 15 मिनट एक नैप लो, सो जाओ। और सभी योद्धा इतना खुश हुए, इतना खुश हुए अर्जुन के ऊपर, उन्होंने कहा हम हमारा पूरा आशीर्वाद देते हैं तुम्हें, तुम विजयी भव। कि तुम्हारे जैसे दयालु कृपालु और कौन हो सकते हैं, हमको 15 मिनट सोने के लिए दे रहे। तो अकेले अर्जुन ने उन सबको परास्त कर दिया और दुर्योधन से रहा नहीं गया। तो दुर्योधन का इतना बड़ा अपमान। तो यहां पर अर्जुन अकेले, क्योंकि पूरे पांडव सेना में अर्जुन ही गुड़ाकेश, इसलिए अर्जुन ने सोचा कि भाई मुझे गुड़ाकेश लोग कहते हैं, तो अब मौका है कि इस मेरे गुण को प्रदर्शित करने का। इसलिए अर्जुन निद्रा पर जो विजय प्राप्त किया, अकेले उनको परास्त किए। अब श्रीमद् भागवत के अनुसार ये अलग अलग श्रेणियां बताई गई है, हमारे अलग अलग प्रकार के स्तर एक दिन के। सबसे पहले जागृत। तो जो जागृत अवस्था है, जब हम जागृत समझते हैं, जैसे शायद कई लोग अब जागृत अवस्था में होंगे, तो जागृत अवस्था सत्वगुण, जब हम सत्वगुण में रहते हैं या जागृत अवस्था में रहते हैं तो सत्वगुण हमारे ऊपर प्रभाव करता है। जागृत के पश्चात जब हम सोने जाते हैं तो एक अवस्था है स्वप्न अवस्था, और स्वप्न अवस्था श्रीमद् भागवत के अनुसार, ये भगवान स्वयं बोले हैं 11वें स्कंद में, भगवान के श्लोक हैं। तो स्वप्न अवस्था रजोगुण। क्यों स्वप्न अवस्था रजोगुण, कोई इस निष्कर्ष पर आ सकता है, कल्पना कर सकता है कि क्यों स्वप्न अवस्था को रजोगुण कहा गया है? स्वप्न व्यक्ति क्यों लेता है? मन में जो इच्छा, अपूर्ण इच्छा जो है अब मन में, उसे पूर्ण करने के लिए वो स्वप्नों में सारी इच्छाएं आती हैं स्वप्न के रूप में। इसलिए लोग अक्सर जो दिन में नहीं कर पाते, जो जिंदगी भर नहीं कर पाते, वो सपने में कर लेते हैं। इसलिए सपनों के ऊपर लोग बहुत गौर करते हैं कि आज मेरा इतना अच्छा सुबह का सपना था, और सुबह का सपना, और कई बार यदि, खैर सुबह वो भी बताना होगा कि सुबह क्या होती है आजकल, तो यदि उनको पूछा जाए कि क्यों सुबह का सपना सच होता है, और सपने में मैंने देखा कि मेरा प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया और जनरल मैनेजर बन गया कंपनी का, वो जो जनरल मैनेजर था वो मेरा जूता साफ कर रहा है। तो जो सपने हैं उसके ऊपर विशेष रूप से कलयुग में, इसलिए लोग जानते हैं कि उनमें से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए फिर गाते भी ऐसे हैं, मेरे सपनों की रानी, क्योंकि ऐसे तो कोई रानी मिलेगी नहीं, तो सपनों में ठीक। तो ये रजोगुण का प्रभाव। सुषुप्ति, जब स्वप्न अवस्था से और गहरी अवस्था में जब व्यक्ति कूदता है, उसे कहते हैं सुषुप्ति। देखिए, शब्द सुनते ही नींद आना शुरू हो सकती है, और सुषुप्ति भागवत के अनुसार जब व्यक्ति शुद्ध तमोगुण, अंध तमोगुण में जाता है, तो व्यक्ति सुषुप्ति इस स्तर पर रहता है। इसके अंदर कोई स्वप्न नहीं रहता, बिल्कुल जैसे कोई मृत व्यक्ति हो, बेहोश भी नहीं कहेंगे, मृत व्यक्ति उस प्रकार से वो रहता है उस अवस्था में। कुछ भान नहीं उसे कि वो कौन है, कहां पर है, वो क्या है, उसका नाम क्या है, कौन से परिवार से है, क्या करता है, कुछ उसे भान नहीं। इसे कहते हैं सुषुप्ति। और ये जो सुख है इसे सुख कहा गया है, आहार निद्रा, ये निद्रा एक प्रकार का सुख है, परंतु ये कैसा सुख है, ज्ञान शून्य, इसके अंदर कोई ज्ञान नहीं कि कैसा सुख मिल रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि गाढ़ निद्रा में है तो उसे यदि आप उठाकर पूछो कैसा सुख मिल रहा है, थप्पड़ मारेगा, अरे मुझे सुख मिल रहा था, परंतु वो बता नहीं सकता कि कैसा सुख मिल रहा है, क्योंकि उसे भान ही नहीं कि वो है कहां। तो ये बहुत ही विचित्र प्रकार का सुख है जिसमें वो सुख की अनुभूति करता भी है नहीं भी, क्योंकि सुख की अनुभूति तब होगी जब ज्ञान होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी को लॉटरी मिल गई, लॉटरी लगी है, और उसे ज्ञान ही नहीं उसे लॉटरी लगी, तो उसे उसे हालांकि वो मालिक है, एक करोड़ रुपए का मालिक होगा, परंतु यदि उसे ज्ञान नहीं तो फिर उस सुख का क्या फायदा। तो इसलिए ये ज्ञान शून्य जो सुख है, ये तमोगुण में जो तमोगुणी सुख होता है, वो ज्ञान शून्य सुख होता है। और इसके परे भगवान कहते हैं तुरिया। कोई सब्जी का नाम नहीं बता रहे भगवान। भगवान कहते हैं दिस इज कॉल्ड दी फोर्थ एलिमेंट। ये जो तीन हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और चौथा तुरिया। तुरिया का अर्थ है जब हम आत्मा के स्तर पर समाधस्थ होते हैं, उसे कहते हैं, वो नींद नहीं है, वो आत्मा के स्तर पर समाधि उसे कहा गया है, उसे कहते हैं तुरिया, वो शुद्ध सत्वगुण। ये तीनों के परे शुद्ध सत्वगुण में स्थित है वो। तो इसलिए जो गुड़ाक का ये भी एक अर्थ है, निद्रा और थकान, ये भी अब शरीर के स्तर पर इसकी चर्चा होगी कि थकान के कारण है अधिक परिश्रम का फल। कोई अधिक परिश्रम कर लेता है, दिन भर यहां वहां भागता फिरा है, तो अधिक परिश्रम की वजह से थकान होती है। और थकान का एक और कारण है शारीरिक दुर्बलता। इसलिए कलयुग में यह थकान सबसे ज्यादा देखी गई है, क्योंकि एक तो शरीर दुर्बल है सभीों का, और इसके ऊपर हर समय युपद्रता, हर समय व्यक्ति भाग रहा है यहां वहां परेशान, सब आहार निद्रा भय मैथुन इसे सिद्ध करने के लिए। तो इसलिए ये जो तीन अर्थ गुड़ाक के हैं, आलस्य, निद्रा और थकान, ये तमोगुण के लक्षण, और अर्जुन ने इन तीनों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। उसी प्रसंग में दुर्योधन अब द्रोणाचार्य से कहते हैं, जब रात्रि में अर्जुन ने अकेले उन सब दुर्योधन के योद्धाओं को परास्त कर दिया, तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि अब अर्जुन और भी थक गया होगा, पूरे दिन भर 14 लाख सेनाओं से सेनानी सैनिक इनको परास्त किया है, अब रात्रि में इतने और, तो अब और थक गया होगा, अब हम दोनों चलते हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा, तुम अर्जुन को जानते नहीं, अर्जुन के अंदर न तो कोई आलस्य है, न कोई निद्रा है, और न थकान। तो उल्टे तुम रात्रि में मारे जाओगे और तुम्हें फिर कोई फल भी नहीं मिलेगा उसका, इसलिए ये गलती मत करना। मैं बचपन से इस अर्जुन को जानता हूं, अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश। तब दुर्योधन को पता लगा अर्जुन का ये भी नाम है। द्रोणाचार्य ने जब बोला कि वो गुड़ाकेश है, कौन गुड़ाकेश, कौन है ये नया कौन आ गया, तो और भी बताया गया है कि गुड़ाकेश अर्जुन को ये नाम मिला, इसका एक और अर्थ है, ये बहुत ही अलग से हटकर अर्थ है गुड़ाकेश का। यदि फिर से हम इसे विभाजित करें तो बताया गया है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं गुड़ाकेश में जो आ है, आ का अर्थ है ब्रह्मा जी, क का अर्थ है विष्णु, ईश शिव जी, और गुड़, गुड़ का अर्थ गुड़ जो हम लोग खाते हैं गुड़। तो अर्जुन ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी इन तीनों के समक्ष गुड़ के समान मीठे हर समय रहते थे। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण विष्णु के सामने, और ब्रह्मा जी और शिव जी वो इतना अचरज किया करते थे कि इस अर्जुन के अंदर ऐसी कौन सी गुड़ जैसी मिठास है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके प्रति इतना आकर्षित रहते हैं। और अर्जुन के अंदर ये बहुत विशेष प्रकार के, अंग्रेजी में जैसे कहेंगे स्वीटनेस, विशेष प्रकार की मिठास अर्जुन के अंदर थी। जैसे कि महाभारत में प्रसंग है कि जब अर्जुन ने प्रण लिया कि कल मैं जयद्रथ को खत्म करने वाला हूं, या तो जयद्रथ खत्म होगा या मैं आत्महत्या करूंगा। तो अर्जुन ने यह प्रण ले लिया, और ऐसा नहीं कि अर्जुन सोते नहीं थे, अर्जुन सोते थे, परंतु उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, और ऐसा नहीं कि उनको एक बार नींद आ गई तो फिर ढोल नगाड़े, हाथी घोड़ा और ये सब लाके उठाना पड़ता था। इसके बारे में हुआ क्या कि उस रात को ये प्रण लेने के बाद, हालांकि युद्ध भूमि में प्रण लिया था, परंतु रात में अर्जुन फिर अपने शयन कक्ष में गए और भगवान श्री कृष्ण चिंतित थे कि यदि इस जयद्रथ को अर्जुन नहीं मार पाएगा तो भगवान जो इतना प्रेम करते हैं अपने अर्जुन से, भगवान चिंतित थे। तो भगवान अर्जुन के निकट आए, अर्जुन के पलंग के निकट आए। तो जब भगवान अर्जुन के पलंग के निकट आए तो भगवान सुने कि एक एक सांस जो अंदर बाहर हो रही थी अर्जुन की, कृष्ण 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 कृष्ण, भगवान का नाम निकल रहा था। तो भगवान ने सोचा कि यदि ये सोते समय सांस लेते समय मेरा नाम ले रहा है तो ये कौन है जयद्रथ, क्या बिगाड़ लेगा जयद्रथ इसका। अब देखिए अर्जुन की स्थिति, पलंग पे सोते समय हर एक सांस में भगवान का नाम निकल रहा है, और हमारी स्थिति, सुबह नहा धो के, रात को पूरा सो के सुबह नहा धो के बैठे हैं और भगवान का नाम निकलते समय नींद आ रही। तो ये अर्जुन का स्तर कि अर्जुन इसलिए विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी, इनके लिए वो गुड़ के समान हर समय मीठे प्रस्तुत होते थे। इसलिए इन्होंने, इन तीनों गुड़ा अवतार ने मिलकर अर्जुन को ये नाम दिया गुड़ाकेश, कि जो हम तीनों को ये मिठास प्रदान करते हैं वो है गुड़ाकेश। अब संजय विशेष रूप से धृतराष्ट्र को ये एक छवि दिखा रहे हैं, हालांकि धृतराष्ट्र अंधा है परंतु फिर भी पार्थ एवं सारथी का संबंध दिखा रहे हैं कि दोनों का संबंध समझो। इसलिए भगवद गीता यदि हमें समझनी है, किसी को भी यदि भगवद गीता समझनी है तो बिना पार्थ और उनके सारथी के संबंध को समझें भगवद गीता का एक अक्षर, आधा अक्षर भी हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में निकले तो श्रीरंगम में उन्होंने ये एक अनपढ़ गंवार जो एक व्यक्ति था इससे भेंट की, और ये व्यक्ति रोज भगवद गीता का पाठ किया करता था, परंतु बहुत अशुद्ध तरीके से। इसे संस्कृत का ज्ञान नहीं था, वो ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाता था, और सभी वहां के श्रीरंगम के पंडित इसकी मजाक उड़ाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि ये व्यक्ति भगवद गीता जैसे ही हाथ में लेता है पढ़ने के लिए, आंखों से इतने अश्रु प्रवाहित होते हैं कि पूरी भगवद गीता गीली हो जाती आंखों के आंसू से, तो चैतन्य महाप्रभु जाकर पूछे कि मैं देख रहा हूं कि तुम भगवद गीता ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे, परंतु इतनी भावना तुम्हारे अंदर कैसे उत्पन्न हो रही? तो इस व्यक्ति ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि रोज भगवद गीता मैं पढ़ूं, परंतु मैं जैसे ही भगवद गीता हाथ में लेता हूं तो मेरे सामने ये दृश्य आता है कि अर्जुन और अर्जुन के आराध्य देव वो अर्जुन का रथ हांक रहे हैं, और इस दृश्य को जैसे ही मैं कल्पना करता हूं, ध्यान में रखता हूं, तो मेरे आंख से आंसू रुक नहीं पाते। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सकता कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवद गीता का वास्तविक तात्पर्य और मर्म तुमने समझ लिया, क्योंकि तुमने भगवद गीता का क्या रहस्य है वो है भक्ति, भगवान और भगवान के भक्त के बीच की भक्ति वो समझ ली है। उसका पूरा तात्पर्य, सारांश, जो भी कुछ कहो, निचोड़, वो तुमने समझ लिया है, और तुम ही वास्तविक भगवद गीता के प्रामाणिक अधिकारी हो। इसलिए इस चित्र को हमें ध्यान से देखना, आप लोग सब ध्यान से देखिए इस चित्र को, कि भगवद गीता जब भी हम पढ़ें, चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का आश्वासन दिया है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, पार्थ सारथी, इनके इस सुंदर चित्र को या इस सुंदर मुद्रा को ध्यान में रखते हुए भगवद गीता समझें, तो आप लोगों ने ध्यान से देख लिया। अब बताइए कि रथ में कितने घोड़े हैं? चार घोड़े। गलत। अच्छा, दूसरा प्रश्न, इसलिए मैंने कहा था ध्यान से देखिए, क्योंकि अब जब भी भगवद गीता हम श्रवण कीर्तन करेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे उस ब्राह्मण को कहा, उस प्रकार से हमारे सामने भी, तो पहले प्रश्न में फेल हो गए। पांच घोड़े हैं। भगवान ने घोड़ों की लगाम कौन से हाथ में पकड़ी है? अच्छा, कोई कह रहा है लेफ्ट, कोई कह रहा है बाएं, और तो नहीं ना, चतुर्भुज तो हाथ नहीं लिया ना भगवान ने? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, अर्जुन ने गांडीव कौन से हाथ में पकड़ा हुआ है? हा? पक्का बाएं या दाएं? बाएं हाथ में। और बाण अपने तरकश तुणीर से कौन से हाथ से निकाल रहे हैं? दाएं हाथ से। गांडीव कौन से रंग का है? हाँ, सुनहरे, हालांकि थोड़ा लाल रंग ज्यादा है, और उसके ऊपर सुनहरा रंग, बहुत कुछ सुंदर अलंकार उसके ऊपर हुआ है। अब ध्यान से फिर से देखिए, हालांकि एक घोड़ा पीछे है, पांच घोड़े हैं एक्चुअली, जो इसके अनुसार, वर्णन के अनुसार रथ के पांच घोड़े थे, और यदि हम, नहीं, वर्णन के अनुसार पांच घोड़े हैं, और यदि हम भगवान श्री कृष्ण के दोनों हाथों को ले तो भगवान दोनों हाथों से लगाम को लिए हैं और जो चाबुक है वो भी भगवान के दाएं हाथ पर है। और अर्जुन, खैर ये तो ठीक था, अर्जुन ने अपने बाएं हाथ में गांडीव को पकड़ा है। और रंग यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो रंग जो हमने चर्चा की, और इसके साथ साथ हमें एक और बात पर गौर करना होगा। हनुमान जी जो कपिध्वज की जो ध्वज के रूप में हनुमान जी हैं, तो इसलिए यहां पर संजय भगवान श्री पार्थ सारथी और पार्थ इन दोनों का विवरण धृतराष्ट्र को दे रहे हैं और धृतराष्ट्र को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो अब भगवद गीता सुनाने वाला हूं उसे यदि ठीक से तुम समझना चाहोगे तो इस बात को ध्यान में रखना कि पार्थ और उनके जो सारथी हैं उनका संबंध समझ लो। अब गुड़ाकेश एवं ऋषिकेश शब्दों का संबंध, अब यहां पर भगवान को बहुत से श्लोकों में ऋषिकेश कहा गया है, परंतु विशेष रूप से यहां पर संजय अर्जुन को गुड़ाकेश कह रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश। तो यदि हम इन दोनों शब्दों को लें, गुड़ाकेश एवं ऋषिकेश, तो अर्जुन की कृपा से हम तमोगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और भगवान श्री ऋषिकेश की कृपा से रजोगुण पे। कैसे? क्योंकि ऋषिक के जो ईश हैं, ऋषिक का अर्थ है हमारी इंद्रियां, तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो हर समय रजोगुण के कार्य में लगी रहती है, क्रिया में लगी रहती है शारीरिक स्तर पर। तो क्योंकि हमारी इंद्रियां ऋषिक हर समय इंद्रिय भोग में लगी रहती है, इसलिए ऋषिकेश की कृपा जब होगी तो वो जो राजसिक इंद्रिय भोग का कार्य है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और जो तामसिक आलस्य निद्रा थकान ये सब की जो आदतें हैं ये हम अर्जुन की कृपा से इस पर प्राप्त विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो नर और नारायण इन दोनों की कृपा से तमोगुण और रजोगुण इन दोनों के ऊपर। तो संजय यही कह रहे हैं कि यदि भगवद गीता किसी को समझनी है तो भगवद गीता तभी समझ में आएगी जब हम सत्वगुण में स्थित रहेंगे और सत्वगुण में स्थित होने के लिए हमें कृपा चाहिए गुड़ाकेश और ऋषिकेश। इसलिए इसके परे हम सत्वगुण में स्थित होंगे और इसके विषय में भगवान भगवद गीता के इस श्लोक में कहते हैं चौथे अध्याय के, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सम्यनेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक में दो प्रयोजन बता रहे हैं, भगवद गीता का ज्ञान अर्जित करने के दो प्रयोजन कौन कौन से हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि श्रद्धावान होना होगा और इंद्रिय संयत, कि हमारे इंद्रियों को संयम में रखना होगा। कई बार लोग केवल अपनी श्रद्धा दिखाते हैं कि मुझे बहुत श्रद्धा है गीता में, परंतु यदि पूछा जाए कि इंद्रिय संयम है कि नहीं तो भगवान कहते हैं कि दोनों चाहिए। कई लोग इंद्रिय संयमी होते हैं परंतु श्रद्धा कुछ नहीं, तो दोनों, श्रद्धा भी होनी चाहिए और इंद्रियों पर संयम भी होना चाहिए और इन दोनों के वजह से हम भगवद गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतार सकेंगे। इसलिए यदि फिर से हम तमोगुण को लें और अर्जुन जो कि गुड़ाकेश हैं जिन्होंने विजय प्राप्त की है उनकी कृपा लें और रजोगुण भगवान श्री ऋषिकेश की कृपा और सत्वगुण में जब हम स्थित होंगे इन दोनों की कृपा के वजह से, तब फिर सत्वगुण में ही श्रद्धा और सत्वगुण में ही इंद्रियों पर संयम प्राप्त किया जा सकता है। और जब हम ये दोनों सिद्ध कर लेंगे तब जाकर भगवद गीता समझ में आएगी। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आगे की भगवद गीता समझने के लिए। क्योंकि ये पूरा चार्ट समझ लेना है हमें, ये टेबल कि ये कहां से शुरू हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम हमारी किसी भी अवस्था में भगवद गीता यदि खोलकर पढ़ें तो हम उसे ठीक से समझ पाएंगे। हालांकि भगवद गीता इतनी शुद्ध है कि हमारी किसी भी अवस्था में हमें शुद्ध कर सकती है, परंतु यदि हमें अर्जुन की तरह समझना है तो रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण में स्थित होने के पश्चात जब हम हमारे इंद्रिय और इंद्रियों को संयम में रखेंगे और श्रद्धा रखेंगे तब जाकर हम जीत पाएंगे। अब ये कुछ चीजें हैं जो मैं पढ़ रहा था कुछ समय पहले, तो मैंने सोचा कि हमारा जो आलस्य ये सारी बातें हमारे अंदर होती है, तो यदि हम तुलना करें कि हम वास्तविक रूप में आध्यात्मिक रूप से आलसी हैं, जैसे कि यहां पर एक एक आश्चर्यजनक बातें आएंगी सामने, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जब हम मंदिर में दान देते हैं तब 20 रुपए के नोट बहुत ज्यादा धनराशि प्रतीत होती है, किंतु वही नोट जब हम खरीदारी के लिए जाते हैं तो 20 रुपया क्या हा? ये कभी अनुभव किया है कि हम रिलायंस फ्रेश गए 20 रुपए लेकर, पहुंचते पहुंचते 20 रुपए खर्च हो जाएंगे, परंतु मंदिर में जब आते हैं तो खाली जेब भी आए तो चलेगा, कई बार तो यहां पर ज्यादा 20 रुपए मिल जाएंगे उल्टे किसी भी तरीके से। तो ये आलस्य का एक लक्षण है, ये गुड़ाक का एक लक्षण है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि 2 घंटे जब हम पूजा में बिताते हैं तो बहुत लंबे प्रतीत होते हैं, किंतु वही जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं खत्म भी हो गई। और फिर टाइम देखते हैं, अरे ब्लैक में टिकट खरीदी थी। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि किसी धार्मिक पुस्तक का 1 अध्याय पढ़ना भी कठिन लगता है, किंतु एक प्रसिद्ध उपन्यास के 100 पन्ने पढ़ना इतना आसान और रुचिकर। यदि हमें भगवद गीता दे दी जाए कि आज सोने से पहले भगवद गीता का 1 अध्याय, 13वां अध्याय, 13वां अध्याय कभी कभी पढ़ा है, बहुत टेक्निकल तो यदि प्रकृति के 3 गुण ये यदि दिया जाए, या ज्यादातर लोग ट्रेन में ये सब उपन्यास वगैरह लेते हैं पढ़ने के लिए कि कातिलों की साजिश, इस प्रकार के उपन्यास जिसके अंदर सब बताया जाता है कि पूरा सस्पेंस और वायलेंस और ये सब कुछ उसके अंदर, तो उसमें बहुत रुचि होती है। परंतु 1 अध्याय तो दूर की बात है, 1 श्लोक, वो सबसे पहले संस्कृत, एक तो संस्कृत में, और उसके पहले देख लेते हैं कि तात्पर्य कितना बड़ा है। यदि तात्पर्य 2 पेज का है तो फिर उसे फास्ट रीडिंग इतना हम लोग सीख लेते हैं भगवद गीता जब सामने रहती है कि कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, फास्ट रीडिंग की ट्रेनिंग लेते हैं लोग, लेकिन भगवद गीता सामने आ जाते ही इतने सारे अध्याय बिना समझे। और इसमें मैं पढ़ रहा था, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि मंदिर के कोई कार्यक्रम की जानकारी हमें 2 सप्ताह पहले होनी चाहिए, अनाउंसमेंट नहीं किया ताकि हम उसे अपने कार्य सूची में जोड़ सके, किंतु कोई अन्य कार्यक्रम के लिए अंतिम 2 मिनट में भी हम अपनी कार्य सूची बदल सकते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि समाचार पत्रों में दी गई हर घटना पर हम विश्वास करते हैं, किंतु किसी आध्यात्मिक पुस्तक के बारे में हम तुरंत प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हर कोई स्वर्ग में जगह चाहता है किंतु कोई मरना नहीं चाहता उससे पहले। अरे जब तक मरेंगे नहीं तब तक स्वर्ग या कहीं पर कैसे जाएंगे। स्वर्गवास हो परंतु मरना नहीं होना चाहिए उससे पहले। ऐसे ही भगवान, ऐसे ही हमें ले चलो बिना किसी पीड़ा के। तो ये सब इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वृत्ति हमारे अंदर है, स्थगन वृत्ति या बहानों का सहारा लेना, आलस्य, थकान, निद्रा, गुड़ाक, तमोगुण, ये सब जो परिवार के सदस्य और हम भी जो बन गए इनके सदस्य, यदि हमें इन पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें श्री पार्थ और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण इनकी शरण ग्रहण करनी होगी। और इसलिए संजय इस श्लोक में धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे भारत एवं उक्तो ऋषिकेशो, कि अब रथम, रथ उत्तमम भी कहा गया है कि रथ उत्तम, इसलिए कहा संजय ने कि अर्जुन का रथ सबसे उत्तम था और सबसे उत्तम रथ को अर्जुन बीच में ले जाकर खड़े किए दिखाने के लिए कि केवल मेरे रथ को देखकर तुम समझ लो कि तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। स्थापयित्वा रथोत्तम, उत्तम रथ सबसे उनका। और क्यों उनका रथ सबसे उत्तम था? दिखने में उत्तम इसलिए नहीं क्योंकि सबसे परम उत्तम भगवान वहां पर पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम के सबसे उत्तम शिष्य उस रथ के ऊपर। इसलिए संजय कह रहे हैं स्थापयित्वा रथोत्तम। तो हे भारत, हे धृतराष्ट्र, अब भी समझ लो कि कोई आशा नहीं है तुम्हारे पुत्रों के इस युद्ध को जीतने की। और फिर आगे अर्जुन अब भगवान श्री ऋषिकेश या गुड़ाकेश अब ऋषिकेश से क्या बोलना प्रारंभ करेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को। तो शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा गीता कोर्स यहाँ पर है, उसके अगले बुधवार को हम इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? मेरे ख्याल से ये जो इमेज लिया गया है, ये इमेज फिर से उन्होंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद फिर पांचवा घोड़ा ऐड किया गया। तो एक्चुअली ये इमेज गलती से आया है, और पांचवा घोड़ा फिर अगले इमेज में जब उन्होंने ऐड किया है तो उसमें पांचवा घोड़ा है। तो वो मैं एक्चुअली ढूंढ के फिर से लाऊंगा उस इमेज को जिसके अंदर पांच घोड़े हैं। हाँ
आध्यात्मिक विषय से संबंधित जो स्वप्न है, पर्टिकुलरली उसके बारे में पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग उसका लिंकिंग डायरेक्टली आत्म साक्षात्कार हुआ वगैरह ऐसे बोलते हैं, तो हमने कैसे देखना चाहिए कि सपने जो आते हैं वो हम किस स्तर पर हमने उन्हें सीरियसली लेना है, और उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, कैसे हमने अप्रोच रखना चाहिए?
नहीं, यदि भगवान के संदर्भ में कोई स्वप्न है तो उस पर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत से भगवान के भक्त किसी भी अवस्था में स्तर पर हों और उन्हें भगवान का साक्षात्कार, जैसे मायापुर में कितने सारी घटनाएं हैं, नरसिंह भगवान को लेकर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लेकर, जैसे एक मायापुर के नरसिंह भगवान की कथा है कि पुजारी को रात्रि में सपना आया कि भगवान श्री नरसिंह देव के चारों तरफ अग्नि है और अग्नि में नरसिंह भगवान की मूर्ति ऐसे तप्त हो रही है। तो बहुत घबरा गए इस स्वप्न को देखकर, तो घबरा गए तो उन्होंने जाके देखा ऑल्टर में कि चंदन यात्रा चल रही थी और उन्होंने चंदन ठीक से लगाया नहीं था भगवान नरसिंह देव के ऊपर, और वो चंदन गिर गया था सब नीचे सूख कर। तब फिर दूसरे दिन भगवान श्री नरसिंह देव फिर से सपने में आकर कहे उनसे कि क्योंकि चंदन यात्रा चल रही है और तुमने ठीक से चंदन लगाया नहीं, इसलिए मेरा शरीर जल रहा था। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें भक्तों को भगवान का साक्षात्कार स्वप्नों में हुआ है और कईयों को होता भी रहता है, तो इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भक्त किस स्तर पर है भगवान के साक्षात्कार में। परंतु यदि भगवान के संदर्भ में कुछ भी हो रहा हो वो शुद्ध ही है। यदि सपने में भगवान आ रहे हैं और जागृत अवस्था में याद आ रहे हैं, तो किसी भी अवस्था में यदि भगवान याद आ रहे हैं तो वो प्रामाणिक ही है, उसमें कोई शंका नहीं।
हरे कृष्ण, गुढ़ाकेश की कृपा से हम तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो और ऋषिकेश की कृपा से रजोगुण पे, तो गुढ़ाकेश की कृपा कैसे प्राप्त करनी है?
गुढ़ाकेश की कृपा कैसे प्राप्त करनी है? जो गुढ़ाकेश ने किया उनके पदचिन्हों पर चलें। गुढ़ाकेश ने क्या किया? पूरी भगवद गीता सुनने के पश्चात करिष्ये वचनम तव, ऋषिकेश ने जो कुछ वचन कहे उन पर अमल किया। तो जो गुढ़ाकेश ने ऋषिकेश के वचनों पर अमल किया, हमें क्या करना है? हमें गुढ़ाकेश के वचनों पर और उनके कार्यों पर अमल करना है, उनके पदचिन्हों पर चलना है, अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, भगवान के शरण में जाकर जो कुछ भगवान की प्रसन्नता भगवान को दे वो कार्य करे।
हेलो, सुषुप्ति का मतलब है कि बीटा वेव्स आते हैं ब्रेन से, निकलते हैं, जो समाधि में भी बीटा वेव्स होते हैं करके, तो ये डीप स्लीप इज कंपेयर टू दैट, तो इसमें क्या समझना है?
नहीं, मैं
अवस्था जो
उसके ऊपर तो नहीं बोलना चाहूंगा, परंतु ये कहना चाहूंगा कि समाधि और सुषुप्ति ये दोनों बिल्कुल अलग विरुद्ध हैं एक दूसरे के। सुषुप्ति में एक व्यक्ति पूरे तमोगुण में रहता है, जिसके अंदर वो अपने शरीर को भी नहीं जानता। आत्म साक्षात्कार तो छोड़ दीजिए, परंतु जो तुरिया जो समाधि की स्थिति है उसमें वो शुद्ध सत्व गुण में स्थित रहता है। तो ये अल्फा बीटा गामा इसको छोड़कर हम यदि शास्त्र जो कह रहा है तमोगुणी वेव्स और सत्वगुणी वेव्स, शुद्ध सत्वगुणी वेव्स, ये वहां से उत्सृज होते हैं, तो जो समाधि की अवस्था है उसमें शुद्ध सत्व, उसमें पूर्ण साक्षात्कार भगवान का होता है, वो एक प्रकार की जागृत अवस्था है। उसमें एक तो व्यक्ति लेटा हुआ नहीं रहता शरीर से, ऐसा नहीं कि समाधि वो पलंग पे कर रहा है अपनी, नहीं, वो एक योगिक आसन में बैठता है, और योगिक आसन में बैठने के पश्चात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और अंततः समाधि, तो इतना सब कुछ करने के पश्चात यदि हम कहें कि वो बीटा वेव्स भी निकल रही है और वो फिर से वो भी सुषुप्ति के ही समान है, नहीं, क्योंकि जो सुषुप्ति में है वो ये सब कुछ करके सुषुप्ति में नहीं जाता। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सुषुप्ति नहीं। तो उसे हम शास्त्रिक दृष्टिकोण से देखें, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो उसमें तो यदि ब्रेन का एक्सप्लेनेशन आप लें या वेव्स का एक्सप्लेनेशन आप लें तो वो केवल शरीर के स्तर पर है। यहां पर सुषुप्ति भी शरीर से परे हो गया, तो ये वेव्स और ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन तो एक फिजिकल कंपोनेंट है, उसको बाहर निकालकर परखा जा सकता है, परंतु ये जो समाधि और सुषुप्ति है ये कोई ऐसी स्थूल वस्तु नहीं है
किसको आप एक्सरे में चेक कर सको,
ये सब चीजें इन सब के परे है ये। क्या बात है, आज बहुत प्रश्न है, सबकी नींद हराम हो गई लगता है।
हरे कृष्ण, उसी के संदर्भ में है, छोड़ो छोड़ो अल्फा बीटा गामा, भजो हरे कृष्ण हरे रामा। तो प्रभु जी, हम जो स्थूल स्तर पर जो नींद लेते हैं तो उसकी तरफ हमारा कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, हमने कैसा अप्रोच रखना है? एज फार एज
दृष्टिकोण यही होना चाहिए कि हम नींद ले रहे हैं ये भी भगवान की सेवा में। अच्छी लगती है ना ये सेवा बात कि ये सेवा पहले किसी ने नहीं दी हमको तो ये सेवा कैसी है कि मेरे शरीर को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है तो उसे स्वस्थ रखना। तो स्वस्थ रखने का एक तरीका है कि शरीर को ठीक समय पर विश्राम देना, ठीक तरीके से विश्राम देना। और दृष्टिकोण यही है, जब भक्त सोने जाते हैं तो भगवान को दंडवत नमस्कार, गुरु को नमस्कार करते हुए सोते हैं कि आपका धन्यवाद कि आज का ये दिन मुझे आपने दिया आपकी सेवा में लगाने के लिए, और यदि आपकी कृपा हो तो कल सुबह भी मैं जिंदा जगूं आपकी सेवा में, आपकी कृपा हो। ये प्रार्थना कर एक भक्त सोते हैं रात को। और कौन सी प्रार्थना कर वो उठते हैं, किस भावना में? कि सौभाग्य कि मैं आज भी जिंदा हूं आपकी सेवा में, और मुझे ये पूरा दिन आज मिला है आपकी सेवा करने के लिए। तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए। बहुत मुश्किल है विशेष रूप से उठते समय इसलिए एक तरीका है कि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे हम जाने कि आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं कि नहीं। एक तरीका है, बहुत प्रैक्टिकल है। जब अलार्म बजती है ना सुबह चार बजे जब बजती, वो ध्यान में रखना होगा कि सुबह चार बजे की अलार्म जब बजती है और उस अलार्म की जो आवाज है, अलार्म की घंटी की आवाज यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की तरह मधुर लगे तो जान लेना चाहिए कि प्रगति हो रही है। और यदि उस अलार्म की आवाज इस पूरे संसार की सबसे कर्कश वाणी लगे हमें, कई बार तो नींद उस डर के मारे पहले खुल जाती है 15 मिनट कि 15 मिनट बाद ये अलार्म बजने वाली है। और कई बार तो वो लाइट देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं, तो कई बार दो प्रकार की भावनाएं होती हैं कि अरे 15 मिनट हैं और सोने के लिए, या फिर केवल 15 मिनट, अभी तो मैं सोया था 4:15 हो गए। तो ये एक टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट। अलार्म की आवाज भगवान के बांसुरी के समान। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय।